लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति। अविनाशी रुद्र यज्ञ के रचयिता, हम सबके प्राणाधार प्यारे बाबा का ये मीठा मधुवन, जो हमें सदैव तपस्या के लिए आकर्षित और प्रेरित करता है, ऐसे बेहद घर में आप सभी ब्रह्मावत्स तपस्या के संकल्प में जो यहाँ पधारे हैं, उनके संकल्पों के आकर्षण में, उनके संकल्पों के आवाहन में हम सब के बीच उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी। हम एक हाथ की ताली से इस फरिश्ते का, इस योग के प्रयोग की विशेष अभिरुचि रखने वाली महान आत्मा का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं उषा दीदी को कि आपने इन्वेंशन माइंड आपका है, आपने प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता के लिए SML कोर्स और अनेक ऐसे कोर्स स्लाइड्स प्रोजेक्ट का निर्माण किया योग के माध्यम से। आज ऐसी विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, प्रखर वक्ता, तार्किक वक्ता को अपने बीच पाकर हम सब हृदय से, नैनों से और अपनी संपन्नता की संपूर्णता के लिए उनसे चाहेंगे कि आज हमें भट्टी का लक्ष्य और उसका उद्देश्य हम सब के बीच रखें। आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी।
ओम शांति। आज के शुभ दिवस पर आप सभी ब्राह्मणों का इस मधुबन के बेहद प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है। बहुत सुंदर तपस्या का ये स्थान, साकार बाबा की, मम्मा की, दादियों की कर्म भूमि, तपस्या भूमि। और इस तपस्या भूमि में तपस्या करने का एक सुंदर अवसर आप सबको मिला है। बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि एक समय आएगा जब मधुबन किला बन जाएगा, योग के वाइब्रेशन से ऐसा ये किला बन जाएगा कि जिसकी योग की प्रकंपन सारे विश्व में प्रकंपित होंगी, अनेकों को साक्षात्कार होगा। तो ये वही समय है कि जब के सारा साल ही कहूं मैं कि विभिन्न सेंटर्स के भाई बहने आकर के योग करके यहां के वाइब्रेशंस को इतना पावरफुल बना देते हैं कि जहां शायद माया के प्रवेश का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो ऐसी सुंदर तपस्या भूमि में आप सभी विशेष समय निकाल करके यहां 5 दिन के बट्ठी के लिए आए हैं और इसलिए इस तपस्या भूमि पर जहां बाबा का विशेष वरदान का हाथ महसूस होता है, कई बाहर के लोग भी आकर के जब इस वाइब्रेशंस के परख करते हैं किसी भी माध्यम से, तो कहते हैं कि खास करके इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इतने पावरफुल और पवित्र वाइब्रेशन है जो और कहीं नहीं है। नीचे भी बट्ठी करते हैं, सेंटर्स पर भी बट्ठी करते हैं, परंतु यहां जब ये 5 दिन की बट्ठी का अनुभव करते हैं तो ऐसा महसूस होता है हर एक को कि जैसे 5 दिन वतन में ही बाबा के साथ का एक मिलन मनाने का अनुभव रहा। बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली में ये बात कहते हैं कि बच्चे अव्यक्ति वतन में आ जाओ, जहां न समय की सीमा है न और कोई सीमा है, ऐसे में मिलन का अनुभव करो, जितनी देर भी बैठना चाहो बाबा के संग बैठ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये 5 दिन ऐसा ही है कि मधुबन सूक्ष्म वतन हो गया है, प्राकृतिक रूप से भी जैसे बादल उतर आए हैं आप सबके लिए और यही महसूस करते हैं कि बादलों के बीच चलते हुए जैसे वतन में ही सैर कर रहे हैं। हर पल बाबा के साथ का एहसास ये 5 दिन आप करते रहेंगे, परंतु ये भूमि पर जब आए हैं विशेष समय निकाल करके तो यही एक लक्ष्य मन के अंदर रहे कि जितना मन का मौन रहेगा, मुख का मौन तो होगा ही लेकिन साथ ही साथ मन का भी मौन, व्यर्थ संकल्पों से भी अपने मन को सहज फ्री कर सकते हैं इस भूमि पर और बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव आप महसूस करेंगे। दुनिया में जब लोग थोड़ा समय भी मुख का मौन रख लेते हैं तो भी अंदर में शक्ति का अनुभव करते हैं, तो मन का मौन जब एक सहज वरदान रूप में प्राप्त हो रहा हो तो ये मौन से तो कितनी अंदर में सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी आबू के लिए गहन ही है, भक्ति मार्ग में भी कि महान ऋषियों ने यहां तपस्या की हुई है और इस गायन का भाव समझ में आता है कि द्वापर के बाद भी अगर ऋषियों ने तपस्या की हुई होगी तो वो इसीलिए किया है क्योंकि वो वाइब्रेशन यहां संगम युग पर इस भूमि को भी मिला है और इसीलिए वो ऋषि मुनि भी यहां आकर्षित हुए तपस्या करने के लिए। और वो भी साधारण ऋषि नहीं आए, लेकिन भक्ति में भी शिरोमणि ऋषि यहां पर आकर तपस्या करके गए। संगम युग में हम ब्राह्मणों की तपस्या का वाइब्रेशन पूरा कल्प चलता है इस भूमि पर, तो इतना पावर इस भूमि को प्राप्त हो गया है कि द्वापर के बाद भी जब आत्माएं आकर के यहां तपस्या करती रही, कई सन्यासी यहां आते रहे और ये भूमि की जो सात्विकता है कलयुग तक भी अगर चली है तो उसका कारण यही है कि हम सभी ब्राह्मणों ने तपस्या की हुई है यहां पर। यानी सारे विश्व से ब्राह्मणों ने ऐसे ग्रुप ग्रुप में आकर के जब तपस्या की हुई है तो कितना तपस्या से सींचा है इस धरनी को भी, जो सारा कल्प तक उसका यादगार रहा। मुझे याद आता है कि जब मैं मधु बनाई उस वक्त मुझे किसी ने बताया कि ये भूमि की सात्विकता इतनी है कि आबू में कोई भी सिनेमा का थिएटर नहीं है, सिनेमा का थिएटर है ही नहीं यहां पर। दूसरी बात कि अभी समझो 90s से होटलों में बार शुरू हुआ, तब तक इस भूमि पर कोई शराब का नाम नहीं था। आप सोचो कितनी सात्विकता होगी। सारे कल्प तक अगर सात्विकता चल सकती है तो क्योंकि सारे भारत भर से जो ब्राह्मण आते हैं ग्रुप ग्रुप में, हर हफ्ते ग्रुप में आते हैं और अपनी तपस्या से सींचा हुआ है, इतनी यहां की तपस्या के वाइब्रेशंस के भगवान भी यही भूमि चुनने के लिए मजबूर हो गए कि पाकिस्तान से यहां तक आ गए। कि शुरू शुरू में जब यहां पर दादियां जब बताती है कि पीयू का पाठ चलता था, यानी ऑलमाइटी बाबा का, जिसको ऑलमाइटी बाबा कहते हैं, तो ऑलमाइटी बाबा जब यहां आते थे, अवतरित होते थे, गुलजार दादी में बाप दादा का आना ये अलग चीज है, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो उस समय ऑलमाइटी बाबा का अवतरण होता था। आप लोग ने शायद सुना हो ना सुना हो, हमारी पुष्पमणि दादी थी, उसके तन में आता था और अचानक रात में आकर के उसको उठाता था। उस समय कोई प्रोग्राम नहीं होता था बाबा का आने का, जैसे अभी प्रोग्राम बनता है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था। अचानक ही उनको नींद से उठा करके बिठा देता था और कई गुह्यते गुह्य रहस्य यहां खुले हुए हैं। उस समय ब्रिजेंद्र दादी और मम्मा दोनों में से कोई एक को वो उठा देता था और सारी रात बैठ करके मुरली लिखाते थे और वो मुरली दूसरे दिन सुबह फिर बाबा को जब दी जाती थी कि ये रात में पीयू ने जो मुरली चलाई, फिर बाबा उसका भावार्थ बताते थे, वो गुह्यते गुह्य रहस्य के भाव प्रकट करते थे, स्पष्ट करते थे। तो इसलिए कहा कि ये भूमि के वाइब्रेशंस के ऑलमाइटी बाबा को खींच करके ले आते थे यहां पर। मेरी एक बार एक दादी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे एक बहुत गुह्य बात सुनाई। कहा उस समय जो पीयू का पाठ चलता था तो उस पीयू के पाठ में सारा भविष्य कैसा होगा, यज्ञ का, विश्व का सारा भविष्य कैसा होगा, वो सब कुछ लिखाया था उन्होंने। तो मैंने पूछा वो कहां गया, ड्रामा में शायद हम तक वो पहुंचना नहीं था, इतना गुप्त रहस्य वाली बातें हम तक पहुंचनी नहीं थी। तो कहा वो सारा भविष्य लिखाया था ब्रिजेंद्र दादी को पीयू ने, और वो भविष्य जो लिखाया था दादी ने सारा बाबा को दिया, सिंधी में लिखाया था। तो बाबा के बाद वो सारा ब्रिजेंद्र दादी के पास में रहता था। तुमने कहा फिर ब्रिजेंद्र दादी के पास अगर होगा तो वो तो मिलेगा, संतोष दीदी के पास होगा। तो संतोष दीदी से पूछा तो कहा वो सारी लिखत सिंधी में थी। तो हमने सोचा इसका हिंदी कराए, तो एक सिंधी माता को दिया कि ये हिंदी करके दो। वो हिंदी कर रही थी, बीच में अचानक उसका शरीर छूट गया। अब शरीर जब छूट गया तो हमें भी ध्यान में नहीं आया कि वो सारी डायरियां ले ले वे ब्रिजेंद्र दादी की। तो उसके बेटों ने देखा सिंधी में है, उनको तो सिंधी पढ़ना नहीं आता था, सारा पस्ती में दे दिया। इतना गुह्यते गुह्य रहस्य वाली बातें, इसलिए कहा शायद ड्रामा को मंजूर नहीं था कि ये रहस्य हम तक पहुंचे। तो बाबा को मालूम था, दादी को मालूम था, इतने गुह्य रहस्य खोले हुए थे, इतने वंडरफुल रहस्य। जब बाबा ने कहा कि क्लास में जब सुनाया था उसमें से कुछ बातें, कमल मणि दादी अपनी जो थी उसके साथ ऐसे ही बैठे बैठे बातचीत हो रही थी एक दिन डाइनिंग टेबल पर, तो उस समय उसने बताया, बहुत गुह्य रहस्य बताया था। तो आप सोचो कि ऑलमाइटी बाबा इस भूमि पर आए हैं, विश्व के अंदर कहीं नहीं आए, तो वो इसीलिए आए कि हम सभी ब्राह्मणों ने, जिस जिसने यहां पर तपस्या की हुई है, वो तपस्या से जो सींचा हुआ है, तो कल्प के संगम युग में ऑलमाइटी बाबा को भी खींच के लाए यहां पर। तो इसीलिए कहा कि ये भूमि की जो महिमा है, और इस भूमि पर तपस्या करने का अवसर मिलना, ये भी एक भाग्य की लॉटरी है। ऐसी भाग्य की लॉटरी कि उस दिन हम मुन्नी बेन से बात कर रहे थे तो मुन्नी बेन ने कहा कि इसका जो रिजल्ट है, ये भट्टियों का जो हर हफ्ते की भट्टी चल रही है मधुबन की, इसका रिजल्ट ऐसा है कि अभी इतने नंबर लग गए हैं लाइन में क्यों में, हमको भी, हमारे सेंटर को भी चाहिए, हमारे सेंटर को भी चाहिए। तो शायद जो पहले वाले अगर दोबारा मांगे तो 2 साल के बाद नंबर लग सकता है। तो ये नंबर लग गया, अब पता नहीं कब लगे है? तो इसीलिए महान भाग्यशाली है, क्योंकि इसका जो आवाज फैलता जा रहा है चारों ओर, सभी की डिमांड इतनी हो गई है कि अब वो सेंटर का नंबर शायद 2 साल के बाद लग सकता है। तब सोचो कितने भाग्यशाली हो कि आपका नंबर तो लग गया है ना। तो इसीलिए कहा कि विशेष समय निकाल करके आए, और जब विशेष समय निकाल करके आए हैं तो पूरा पूरा एक एक सेकंड का फायदा कैसे उठाया जाए, उसका हमें अपने आप में प्लानिंग करना होगा अमृत वेले से लेकर रात्रि तक। इसलिए कहा कि जितना मुख के मौन के साथ साथ मन का मौन रहेगा तो बाबा प्रत्यक्ष में अनुभव कराएगा। इतने सुंदर सुंदर अनुभव जो पिछले ग्रुप्स में सुने हैं, इतने सुंदर हरेक के अनुभव है, कैसे साकार बाबा की, मम्मा की, पालना की फीलिंग हरेक ने किया है। तो इसीलिए कहा कि यहां जो अनुभव करना चाहो, ये वरदानी भूमि है, वरदानी भूमि पर एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहां व्यर्थ को अलाउ है ही नहीं, है ना। व्यर्थ चलाने की जिसकी भी आदत होगी वो यहां तक पहुंच नहीं सकेगा। इसलिए जब संगठन में इतना पावरफुल योग करते हैं तो ऐसी ज्वाला प्रकट होने का अनुभव करेंगे कि जिस ज्वाला के अंदर जन्म जन्मांतर के विकर्म जैसे दग्ध होते जा रहे हैं, ये फीलिंग आएगी। बाकी सब समय योग करते हैं, ऐसा नहीं कि योग नहीं करते हैं, सेंटर्स पर भी हम जाते हैं, योग करते हैं, लेकिन उस योग में इतनी पावर हम खुद में नहीं कर पाते हैं इकट्ठी, क्योंकि दिन भर का कारोबार रहता है, दिन भर की दुनिया की बातें अंदर में घूमती रहती है। तो योग करना चाहते हुए भी कुछ कुछ बातें बीच बीच में अंदर में आती रहती है, लेकिन यहां पर जब कोई कारोबार ही नहीं है, कोई और बात ही नहीं है, तो व्यर्थ चलने का मार्जिन ही नहीं है। और ऐसे में जितनी स्थिति को पावरफुल बनाना चाहो उतनी बना सकते हैं। जितनी ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव करना चाहो कि जिसमें जन्म जन्मांतर के विकर्म को दग्ध कर दे, हम ये अनुभव कर सकते हैं। यही ये बट्टी का विशेष लक्ष्य है कि हर कोई जब जाए तो ऐसा जैसे रीजेन्युएट हो गया हो, अंदर से कायाकल्प हो गई हो अंदर से, और जो बाबा के साथ के अनुभव करना चाहे वो अनुभव ले सकते, जिस संबंध का अनुभव करना चाहे कर सकते, जिस स्थिति का अनुभव करना चाहे कर सकते हैं। तो लक्ष्य इतना ऊंचा हो, साधारण सा लक्ष्य न हो हमारा, ऊंचे ते ऊंची पावरफुल से पावरफुल स्थिति का अनुभव करने का लक्ष्य अगर होगा तो हर अनुभव बाबा कराने के लिए जैसे आवाहन कर रहे हैं बच्चों का, ऐसा महसूस होता है कि जैसे वतन में बाहें पसारे बाबा खड़े हैं बच्चों का आवाहन करते हुए कि बच्चे आ जाओ और जो अनुभव करना चाहो कर लो। तो इसीलिए ये समय जो मिला है, ये समय दोबारा कब मिलेगा मालूम नहीं। तो ये समय का जितना फायदा उठा सकते हैं अपने पुरुषार्थ के लिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए उठा सकते हैं। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ वापस वहां नहीं होगा या पता नहीं कब चांस मिलेगा, क्योंकि समय ऐसा बदल रहा है। तो समय जब अचानक का बदलता रहता है तो यहां की स्थिति ऐसी बन जाए जो जब भी कोई बात आए, कोई समस्या आए, कोई परिस्थिति आए, तो ये स्थिति हमें आकर्षित करे, स्थिति हमें खींचे, ये समय की अनुभूति की जो स्थिति है वो हमें खींचे और एक सेकंड में वापस उस स्थिति में जा करके हम उस प्रॉब्लम का हल कर दें, या भीड़ के बीच में भी होते हुए हम समय निकाल करके दो सेकंड के लिए भी अंतर्मुखता में जा करके स्थिति का अनुभव कर सके। इसलिए यहां पर जितना अंतर्मुखता के द्वारा एकाग्रता का अभ्यास करेंगे, कितनी प्रकार की एकाग्रता, खाली मन की एकाग्रता नहीं, बुद्धि की एकाग्रता नहीं, भावनात्मक एकाग्रता, शारीरिक एकाग्रता, है ना, सारी एकाग्रता जब आ जाती है तब वो ज्वालामुखी स्थिति का अनुभव, बीज रूप स्थिति का अनुभव हम कर सकेंगे। तो इसलिए कहा कि आने वाले समय में ये यादें, ये स्थिति जो है हमें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो कैसा भी समय आए तो भी स्थिति हमें खींच ले। जैसे कई स्मृतियां होती है, स्मृति कोई बहुत सुंदर स्मृति होती है, बहुत अच्छी अनुभूति की स्मृति होती है, तो कभी कभी एकांत में होते हैं या चलते हैं या भीड़ के बीच में होते तो भी वो पल खींच लेता है हमें, वो स्मृतियां खींच लेती हैं। ऐसे ये स्मृतियां हमें खींच ले और नेचुरल रूप से हमारा पुरुषार्थ तीव्र होने लगे, ऐसा ये समय का हमें फायदा लेना है। ऐसी यादगारें स्मृति के अंदर हमें संजो लेना है, ताकि कोई भी समय में कोई भी आत्मा भी अगर हमारे पास आए अंजलि लेने के लिए तो हम अपने अनुभव की अंजलि उसको दे सके। दूसरी बात कि अब तक हमने ज्ञान बहुत सुना, अब उस ज्ञान के एक एक पॉइंट के प्रयोग का अनुभव प्राप्त करना है, क्योंकि ज्ञान सुना तो है, समाया हुआ भी है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं अनुभव नहीं है। अनुभव कब होता है? जब प्रयोग करेंगे तो अनुभव होगा। उन ज्ञान रत्नों का प्रयोग करना माना एक्सपेरिमेंट्स करना, और एक्सपेरिमेंट्स करने से एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपेरिमेंट्स किन किन लेवल पर करना है? एक्सपेरिमेंट मनसा लेवल पर करना है, शुभ भावना के लेवल पर करना है, कर्म व्यवहार के लेवल पर करना है, संबंधों के लेवल पर करना है। एक ही ज्ञान की पॉइंट हो जो हमें क्लास के रूप में प्राप्त हुई, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके हम देखें, क्योंकि प्रयोग करेंगे तो अनुभव मिलेगा, और अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकता है माया से। तो इसीलिए एक एक पॉइंट के अनुभवी बनना है, यही समय हमें मिला है। ये जैसे मेडिटेशन हॉल प्रयोगशाला हो गई हमारी, कि जहां पर जो बातें हमने सुनी उसका प्रयोग करने का चांस मिला है। यहां से बाहर निकलने के बाद भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। हर कर्म के लेवल में उसका प्रयोग करना है। तो इसीलिए एक ऐसी प्रयोगशाला में हम सभी आए हैं कि जो समय वहां नहीं मिलता था ज्ञान की गुह्यता में जाकर के अनुभव प्राप्त करने का, ये समय मिला है। क्योंकि जितना ज्ञान की गुह्यता में जाएंगे, प्रयोग करते हुए अनुभवी बनेंगे, उससे होगा क्या कि हमारी अंदर से परिपक्व अवस्था होगी, ज्ञान की परिपक्वता बढ़ेगी, ज्ञान की जो मैच्योरिटी है वो बढ़ेगी। और परिपक्व अवस्था वाला व्यक्ति कभी भी कोई भी ज्ञान की बात को एक स्थूल लेवल तक नहीं लेकिन डीप लेवल तक उसको महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है। इसी का नाम है परिपक्वता। तो जब ऐसी ज्ञान की परिपक्वता आ जाएगी तो अंदर से जैसे अंगद की तरह स्थिर बुद्धि, स्थिरता हमारे अंदर आ जाएंगी। जो बुद्धि की, मन की चंचलता महसूस करते थे अब तक, वो चंचलता जैसे समाप्त हो गई हो और एकदम स्थिरता जीवन के अंदर आ जाए, जिसके लिए गीता में भी कहा स्थित प्रज्ञ स्थिति, स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ स्थिति, ये ज्ञान की परिपक्वता से ही हमारे अंदर आएगी। और ऐसी ज्ञान की परिपक्वता जिसने प्राप्त कर ली हो, उसको कभी भी कोई भी बात विचलित नहीं कर सकती है, कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती है। आने वाले समय में बाबा ने हमें पहले से ही कहा है कि बच्चे ऐसे ऐसे टेस्ट पेपर्स आएंगे, ऐसे ऐसे परीक्षा के पेपर आएंगे आपके सामने जो विचलित करने वाली स्थिति पैदा करे, लेकिन जिसके पास ये ज्ञान की परिपक्वता की स्थिति है वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के पेपर में विचलित नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे हर रीति से शांत और स्थिर, हर परीक्षा को पास करना उसके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कौन सी पॉइंट को किस तरह से यूज करना है और यूज करते हुए उसको जीवन के अंदर फायदा उठा करके खुद भी एग्जाम्पल बने, अनेक आत्माओं के लिए भी हम प्रेरणा स्रोत बने। तो इसीलिए कहा कि भट्टी करने का चांस आपको नीचे शांतिवन में भी मिला है, आपने नीचे भी भट्टी किया है, सेंटर्स पर भी भट्टी किया है, लेकिन ये जो एक भट्टी का चांस है ये विशेष लॉटरी है। और संगठन में जब एक ही संकल्प के साथ का प्रयोग करेंगे तो उसमें और भी अच्छा अनुभव कर पाएंगे। जो संकल्प हमें सुबह सुबह के समय में स्वमान की रीति से मिलता है, क्योंकि हर रोज का स्वमान मिलेगा, तो जब संगठित रूप से उस स्वमान का अभ्यास करेंगे, जब संगठित रूप से उस एक संकल्प में हम स्थिर हो जाएंगे, उसका अनुभव और विशेष होगा। तो इसलिए हर रोज की जो दिनचर्या के अंदर जो दिन भर के लिए हमें संकल्प प्राप्त होता है, स्वमान प्राप्त होता है, उस स्वमान को सारे दिन स्मृति स्वरूप होकर के चलना आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम स्वमान तो धारण करते हैं, लेकिन सुबह के समय में तो रहता है, अमृत वेला रहता है स्वमान, लेकिन दिन भर में क्या होता है, भूल जाते हैं, स्मृति स्वरूप होकर के नहीं चल सकते हैं। जब स्मृति स्वरूप ही नहीं तो समर्थ ही कहां से आएगी। इसीलिए ये मौका मिला है कि जो स्वमान हमें मिलता है अमृत वेले से रात्रि तक उस स्वमान के स्मृति स्वरूप होकर के उसकी समर्थी क्या होती है उसको अनुभव करना, उसको प्रैक्टिकल में कर्म में व्यवहार में ले आना और उसके रिजल्ट्स को देखना। ऐसी समर्थी कि जो हमारे मन बुद्धि को भी अंदर से सशक्त कर दे, ऐसी समर्थी आ जाएगी, एम्पावर्ड हो जाएंगे। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा है कि अंतिम समय दुनिया का वाइब्रेशंस इतना पोल्यूटेड हो जाएगा, इतना दूषित हो जाएगा, अनेक प्रकार की संस्कार वाली आत्माएं वातावरण को जो नेगेटिविटी से दूषित करेगी, ऐसे समय में हमारे लिए कवच का आधार या कवच का काम यही जो स्मृति स्वरूप और समर्थि का अनुभव हमने यहाँ किया है, वही हमारे लिए कवच बन करके हमारी सुरक्षा का आधार बनेगी। इसीलिए हर रोज के जो स्वमान प्राप्त होते हैं और हर रोज के स्वमान को स्मृति स्वरूप सो समर्थि स्वरूप बनना और उसका उसकी गहराई में जाकर के उसका अनुभव करना, वो स्थिति क्या है, वो स्वमान किस रूप से सुरक्षा का कवच बन सकती है। क्योंकि बाबा ने भी इतने सारे स्वमान जो हमें इतना समय से दिया है वैसे नहीं दिया है, लेकिन वो स्वमान का प्रैक्टिकल स्वरूप अनुभव करने का ये समय मिला है। देखो नीचे भी जब भट्टी होती है या सेंटर्स पर भी भट्टी होती है तो भी आप लोगों को बीच बीच में सेवा करने के लिए भी कहा जाता है कि भाई किचन में जाओ, माताओं को भाइयों को कहेंगे परोसने का, तो फिर भी स्थूलता में आना पड़ता है। लेकिन यहाँ वो भी नहीं है, जब वो भी नहीं है उससे भी ऊपर हो गए, तो इसीलिए स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बनना आसान हो जाएगा और लिफ्ट मिलेगी। अमृत वेला विशेष बाबा के वरदान को अनुभव करना और बाबा के वरदान को अनुभव करते हुए अमृत वेला इतना पावरफुल महसूस करना ताकि ये पावर जैसे हमेशा के लिए हम अपने अंदर भर ले। मधुबन में जो पावर मिलेगी वो और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि अक्सर अमृत वेला तो हर एक अपने घरों में ही करता है, तो इसीलिए कभी झुटका कभी कैसा होता है, कभी ढीला होता है, कभी पावरफुल भी होता है, लेकिन यहाँ लगातार जिसको बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास, तो लगातार निरंतर 5 दिन का वो अभ्यास वो हमें मदद करेगा, ऐसी अंदर में शक्ति भरेगा कि जिस शक्ति के आधार से हम जैसे उससे भरपूर हो जाएंगे, वो पावर ऐसी अंदर में भर जाएंगी कि अमृत वेले का जो विशेष महत्व है उसको हम महसूस कर सकेंगे। तो चाहे स्वमान हो, चाहे अमृत वेला हो, चाहे दिन भर के स्थिति हो, प्रयोगशाला में प्रयोग करने की बातें हो, ये 5 दिन जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कैसी भट्टियां जो शुरू में होती थी जिसमें बाबा कहते थे क्वारंटाइन में है, क्वारंटाइन में जब होते हैं तो क्या होता है, क्वारंटाइन माना वो मुरली में कई बार ये शब्द आता है कि जहां पर सेफ है ना, कोई प्रकार का इन्फेक्शन या बाहर का कोई भी जैसे इन्फेक्शन नहीं लगता है, तो यही समझो कि जैसे बाबा के समय की भट्टी होती थी और उस समय में बाबा ये शब्द देता था कि क्वारंटाइन में है आप सब, तो बाहर कितने भी इन्फेक्शियस वर्ल्ड हो दुनिया हो लेकिन क्वारंटाइन में जब आ जाते हैं तो बाहर का कोई भी जैसे इन्फेक्शन हमें नहीं लग सकता है। इसीलिए बाबा ऐसे समय पर विशेष भोजन पर भी ध्यान खींचवाते थे, और अनुभव यही है कि अभी बरसात के दिन है तो भोजन में भी आप विशेष ध्यान रखना कि कहीं ऐसा न हो कि तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए। जितना लाइट रहेंगे, हल्का रहेंगे, उतना आप इस वातावरण में भी सेफ रहेंगे, ऐसा महसूस करेंगे जैसे सचमुच क्वारंटाइन में है, सेफ है, बाबा के गोद में बैठे हुए हैं, हर रीति से सेफ है। न माया का कोई प्रभाव है, न कोई नेगेटिविटी का प्रभाव है, न व्यर्थ का प्रभाव है, कोई भी हमारे बुद्धि को छू नहीं सकता है, इतने हम सेफ बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस करेंगे। तो इसीलिए ये 5 दिन की भट्टी आपके लिए एक ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएं, और इतना जैसे कि बाबा कहते हैं कि अभी हाई जंप भी नहीं लेकिन उड़ना है, उड़ता योगी, उड़ता योगी अनुभव करो आप, यही लक्ष्य रखना कि बस हर वक्त उड़ता योगी बन करके अंतवाहक शरीर के द्वारा जैसे निरंतर बाबा के साथ में अनुभव करते हुए वतन में एक एक पल बिता रहे हैं, जितना पल बाबा के संग संग बिताएंगे उतना ही जैसे पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। पद्म कितने होता है पता है? दुनिया में कोई लाखों पति होते हैं, आजकल बहुत लाखों पति हैं, उसके बाद करोड़पति भी है, करोड़पति के बाद अरबपति भी मिलेंगे कोई कोई, उसके बाद खरबपति, तो दुनिया में कितने होंगे खरबपति, गिने चुने 2-4 होंगे जो भी हो, मुट्ठी भर होंगे, लेकिन खरबपति के बाद भी, खरबपति के बाद नील, नील, और नील के बाद, नील के बाद शंख, शंख, नील के बाद शंखपति, नीलपति, शंखपति, और उसके बाद पद्मपति। तो आप सभी एक एक कौन हो? पद्मपति। इसलिए बाबा कहते दुनिया के लोग क्या है आपके सामने? कुछ नहीं है। अरबपति खरबपति भी कुछ नहीं है। तो ये 5 दिन हर दिन पद्मा पद्म पति अनुभव करने का समय है कि जब पद्म हम इकट्ठे कर सके, इतना अपनी कमाई कर सके, ऐसी एक कमाई की 5 दिन की सीजन हो, जैसे दिवाली में व्यापारी लोग की सीजन चलती है तो नींद नहीं आती है 5 दिन। जिसका बिजनेस फुल चलता हो 5 दिन तो दिन और रात क्या करते हैं? खाते भी नहीं है। तो ये 5 दिन क्या हो गया? ये 5 दिन पद्म कमाने का अगर सौभाग्य मिल जाए तो उसको नींद भी आएगी, नींद भी आएगी। इतना खुशी, कमाई की जो खुशी है इतनी अधिक होगी कि ये जो कहते हैं कि नींद आती, नींद तो आ ही नहीं सकती है, योग में नींद आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इतने पद्मों की कमाई कर रहे हैं। जब भी आपको नींद जैसा महसूस होवे ना, तो यही बात सोचना, आप लाखों पति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, नीलपति, शंखपति और पद्मपति हम हैं, तो नींद क्या होगा? छुमंतर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो ये 5 दिन पद्म की कमाई करने का सीजन है, तो इसीलिए इतना कमाई करके यहाँ से जाओ जो लुटा सको, दुनिया को लुटा सको, इतना कमाई करके जाओ कि ऐसी झोली भर दो कि लोग भी सोचेंगे अरे इसको क्या ऐसा मिला है जो ये जैसे जमीन पर चल ही नहीं रहा है, है ना, फर्शवासी नहीं लेकिन अर्शवासी दिखाई दे, आपकी चलन से चेहरे से ये दिखाई दे कि ये फर्शवासी नहीं है अर्शवासी है। तो इतना पद्मों की कमाई को जमा करना है, ये 5 दिन का अवसर मिला है, ये लॉटरी मिली है, तो इसको हाथ से, एक पल भी हमारे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये है लक्ष्य के, आप अपने हर रोज, आप लोगों को सुविधा तो ये मिलेगी ही कि हर रोज का स्वमान, हर रोज का अमृत वेले पर शुद्ध विचार, नमः शाम का समय का योग इतना पावरफुल आप करो कि बस आत्मा जैसे हर रीति से एकदम शुद्ध, कई जन्मों के जो अंदर में विकर्म है वो ऐसे दग्ध हो जाए कि एकदम आत्मा बेदाग हीरे की तरह चमके, मणि की तरह चमके, है ना, ऐसे हर एक के चेहरे से वो मणि चमकती हुई नजर आए। तो यही हमारी भी शुभ भावना शुभकामना है, और आपके इस भट्टी का लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है, और साथ में आप बहुत अखुट कमाई करो, यही शुभ भावना है। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय दीदी ने एक कुशल पारखी की भांति जिन चीजों से, जिन सूक्ष्म ज्ञान के प्रयोगों से और जिन योग की गहन अनुभूतियों के मार्ग से अपने को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है, उसी श्रृंखला में उन्होंने हम सबको प्रेरित किया। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य दोनों हमें मार्ग प्रशस्त किए, और हम आदरणीय दीदी को एक हाथ उठाकर मन का मौन, मन की एकाग्रता, स्थिर प्रज्ञ, शांत शीतल और योग ज्ञान के सूक्ष्म प्रयोग दिनचर्या में करते हुए और अपने जीवन में नवीनता की इतनी गहराई भर लें कि हमें कोई भी सिचुएशन इस योगी जीवन से विचलित ना कर सके, हम बने, अनेकों को बनाएं, यज्ञ के आदि के योग भट्टी के दिनों को जैसे दीदी ने हम सबके समक्ष उकेर दिया, और हम दीदी से संकल्प कर रहे हैं कि 5 दिन बाद आप हमारे मस्तक में चमकती हुई वो ज्योति, नैनों में वो रूहानी नूर और फरिश्ता उड़ान आप हमें अर्शवासी के रूप में अवश्य पाएंगे। ऐसा संकल्प लेते हुए हम दीदी के इस उद्बोधन का शुक्रिया करते हैं।
मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की, मस्त पवन है स्नेह का चमन है, मस्त पवन है स्नेह का चमन है, बेला है मंगल मिलने की, मन पंछी वतन में रुत है ये।